पहले कि आज की चर्चा शुरू करें, पिछली बार हमने डिस्कस किया था फोर्स के ऊपर। इससे जो पहला चैप्टर प्रीवियस पीसीपी प्रोग्राम था उसमें हमने डिस्कस करा था चैप्टर फोर्स। तो उसमें हमने देखा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट है, वो चाहे वो रेस्ट में है या मूव कर रहा है, उसकी उस स्टेट को चेंज करने के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत है। तो कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, जब तक हम नेट एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर वो मूव कर रहा है देन इट विल मूव कंटिन्यूसली। पर जैसे कि आप देखते हैं पेड़ पे फल लटका हुआ है, जब वो टूट जाता है तो फिर वो मूव करने लगता है। पहले वो रेस्ट में था, अब टूट गया तो वो मूव करने लगा। पर हम यहाँ कह रहे हैं कि जब तक फोर्स अप्लाई नहीं होगा वो मूव नहीं करेगा, अगर रेस्ट में था तो रेस्ट में रहेगा, तो ये फिर क्यों मूव करने लगता है? तो थोड़ा बहुत तो आपने सुना होगा, ये बहुत ही बातें आजकल हमें सुनने को मिल जाती है कि न्यूटन ने के ऊपर एप्पल गिरा और उन्होंने कहा कि ये एप्पल क्यों गिरा, और उन्होंने ग्रेविटेशन की जो बात करी थी वही है कि वो जो एप्पल या कोई भी फ्रूट या पत्ता टूट जाता है तो वो नीचे गिरने लगता है या मूव करने लगता है, उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होता है तब जाके वो मूव करता है, और उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आज का जो चैप्टर है ग्रेविटेशन, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ग्रेविटेशन होता क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, क्यों होता है, और इसके अंडर, इस फोर्स के अंडर जो बॉडी मूव करते हैं तो उनके इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहली बात आती है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। हमने कहा कि कोई भी जैसे पत्ता टूट जाता है या फल टूट जाता है वो नीचे गिरने लगता है, और वो हमेशा अर्थ की तरफ ही मूव करता है, ऊपर की तरफ नहीं जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर न्यूटन ने दिया था, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी शायद आप लोगों ने सुनी भी होगी, कि एक पेड़, एप्पल पेड़ के नीचे वो बैठे थे और एक एप्पल गिरा और उनके सर पे गिरा। फिर उन्होंने सोचा कि ये नीचे क्यों गिरा, फिर उन्होंने यही सोचा कि ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है जिसकी वजह से ये गिरा। तो अब अगर कोई फोर्स उस पर लग रहा है, अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन ज़रूर होगा, क्योंकि हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस करा था फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक नेट एक्सटर्नल फोर्स काम करता है तो बॉडी एक्सेलरेट होता है। तो इस केस में जब बॉडी अर्थ की तरफ आ रहा है ड्रॉप होने के बाद, तो क्या इसमें भी बॉडी का एक्सेलरेशन होता है? इसको समझने के लिए होता है या नहीं होता है, आप एक सिंपल सा एक्टिविटी अपने आप भी घर में कर सकते हैं। आप एक स्टोन लीजिए, उसको 1 मीटर हाइट से नीचे गिराइए, ड्रॉप करना है आपको, फेंकना नहीं है, पुश नहीं करना है नीचे की तरफ, बस हाथ से छोड़ दीजिए ड्रॉप। तो देखिए कि जब वो ग्राउंड पे गिरता है वो उसका स्पीड कितना है। अब उसी स्टोन को आप और ज़्यादा हाइट, सपोज 5 मीटर हाइट या 10 मीटर हाइट से आप गिरा के देखिए, अभी भी ड्रॉप ही करना है। तो आप देखेंगे जब वो ग्राउंड को हीट करता है तो हीट करने से पहले उसका स्पीड कितना था। तो दोनों आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि जो ज़्यादा हाइट से आपने गिराया है उसके स्पीड ज़्यादा है, तो ऐसा क्यों है? मास तो सेम था और आपके अर्थ के फोर्स भी सेम है, तो ये फिर ज़्यादा हाइट से जब गिर रहा है तो ज़्यादा स्पीड क्यों है? क्योंकि वो आपके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो एक्सेलरेट हो रहा है, तो ज़्यादा डिस्टेंस जब एक्सेलरेट होता है तो उसका स्पीड भी ज़्यादा हो जाता है। तो हमने ये देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक एक्सेलरेशन भी है और बॉडी एक्सेलरेट होता है, और जब किसी ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर वो मूव करता है तो उसके स्पीड में भी चेंजेस आते हैं। तो ये तो एप्पल को अर्थ अपने तरफ खींच रहा है तो एप्पल आके गिरा, या कोई भी फ्रूट या कोई पत्ता या कोई स्टोन आपने गिराया तो वो भी गिरा। तो क्या यही सेम चीज़ें अलग वस्तुओं के लिए भी लागू होता है, सेम फोर्स, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे कि अर्थ क्या मून को भी अट्रैक्ट करता है? अर्थ मून को भी अट्रैक्ट करता है और वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। और जो अर्थ के चारों तरफ मून एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता रहता है, उसके लिए भी जो सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करने के लिए एक सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए, एंड दैट सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ ऑन द मून। जो ग्रेविटेशनल फोर्स से मून को अट्रैक्ट करता है अर्थ, उसी के वजह से ही वो चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है। तो ये सेम केस अप्लाई होता है सारे प्लैनेट्स के लिए भी। प्लैनेट्स जो सन के चारों तरफ मूव करते हैं ऑर्बिट्स में, तो सन और प्लैनेट्स के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो हम यहाँ जनरलाइज कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो छोटा है बड़ा है, अगर उसका मास है तो उसके बीच में, मतलब कोई भी दो ऑब्जेक्ट आप ले रहे हो, अगर उनके पास मास है तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा। और इसके सबसे आपने और भी बहुत सारे फोर्स के बारे में पढ़ा होगा, जैसे मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स में अगर इक्वल सेम पोल आप पास पास लेकर आ रहे हो तो रिपल्सन होता है, ऑपोजिट पोल लाते हो अट्रैक्शन होता है। पर ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में हमेशा ये अट्रैक्टिव ही होता है, हमेशा अपने तरफ ही खींचेगा। अर्थ भी मून को अपने तरफ खींचेगा, मून भी अर्थ को अपने तरफ ही खींचेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, और ये पूरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, चाहे सिर्फ अर्थ के ऊपर नहीं, किसी भी प्लैनेट के ऊपर आप चले जाओ या पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, सब हर जगह पे ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कि सारे ऑब्जेक्ट के ऊपर मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है और ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है, तो इसके बेसिस पर न्यूटन ने एक लॉ दिया जिसको कहा जाता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसका स्टेटमेंट ये होता है कि एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल विद ए फोर्स, दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड inversely proportional to the square of the distance between them. The force is along the line joining the two particles. मतलब कि यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स मतलब छोटे से छोटा से लेकर बड़े से बड़ा तक हम बात कर रहे हैं, जैसे कि सॉब एटमिक पार्टिकल के साथ भी ये होता है, आप और आपके फ्रेंड के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है, और अर्थ और मून के बीच में, सन और अर्थ के बीच में, या सन और किसी और प्लैनेट्स के बीच में भी रहता है जिनका मास बहुत ज़्यादा है। तो छोटा मास हो या बड़ा मास हो, यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल्स हैं या जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सब के बीच में ये फोर्स एग्जिस्ट करता है और हर एक ऑब्जेक्ट बाकी सारे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड, इसका डायरेक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमें मिलता है। द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब जिस दो ऑब्जेक्ट के बीच में आप ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं उन दोनों के प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर मास ज़्यादा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा, और मास कम हो जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा। अगर डिस्टेंस डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा, अगर डिस्टेंस कम करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा। एंड इट्स डायरेक्शन फोर्स है तो वेक्टर क्वांटिटी है, एक मैग्नीट्यूड तो हमने देख लिया, डायरेक्शन कैसे होता है, द फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स, उन दोनों पार्टिकल्स को अगर हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लें तो जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है उसी डायरेक्शन में ही ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। तो ये तो स्टेटमेंट था. अगर हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो सपोज द ग्रेविटेशनल फोर्स इज एफ, देन एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम वन एम टू, एम वन इंटू एम टू. एम वन इज मास, एम वन एंड एम टू आर द मासेस ऑफ द टू पार्टिकल्स, एंड एफ इज प्रोपोर्शनल टू वन बाय आर स्क्वायर, वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स. तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर. तो इसको अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएं तो एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर, विद जी इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एंड दिस कॉन्स्टेंट इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट. इसको हम कैपिटल जी के हिसाब से लिखते हैं और ये यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है. इसका मतलब ये है कि इसका वैल्यू चाहे आप अर्थ पे ले रहे हो, अर्थ के किसी भी जगह पे ले रहे हो, या सन पे कहीं और किसी भी जगह पे ले रहे हो, उसका वैल्यू कॉन्स्टेंट रहता है. यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में इसका वैल्यू कॉन्स्टेंट रहता है. और इसका वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर. तो ये जो वैल्यू है 10 टू द पावर माइनस 11, इसका मतलब ये बहुत ही छोटा वैल्यू है, जी का वैल्यू जो बहुत स्मॉल है. इसीलिए जो हम कहते हैं कि अर्थ अपने तरफ सारे ऑब्जेक्ट को खींचता है, और हमने ये भी कह दिया कि सारे ऑब्जेक्ट जिनका मास है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचते हैं, मतलब आप भी, आप और आपके फ्रेंड अगर आसपास बैठे हो तो आपके बीच में भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, पर आप कभी इसको फील नहीं कर पाते हो. क्यों? क्योंकि जो 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू आप दोनों के मास हम मल्टीप्लाई कर भी देंगे तो वो बहुत ही छोटा वैल्यू है, तो वो जो फोर्स आएगा बहुत स्मॉल है, इसलिए आप वो फोर्स को फील नहीं कर पाते हो. बट जब हम सेलेस्टियल बॉडीज लेते हैं, जैसे कि अर्थ हो गया, सन हो गया, प्लैनेट्स, मून, इनका मास बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उनके केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स हम कैलकुलेट करते हैं वो कंसिडरेबल होता है कि उसको फील किया जा सके, या फिर उससे कोई बॉडी अट्रैक्ट होकर उनकी तरफ आ सके. तो यही वजह है, अदरवाइज ग्रेविटेशनल फोर्स हर किसी भी दो पार्टिकल के बीच में रहता है, बस उसका मैग्नीट्यूड आपको कैलकुलेट करना है. अगर आपको दोनों के मास और डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स और टू ऑब्जेक्ट्स पता है. ये था फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उससे हम ग्रेविटेशनल फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो इसमें हमने देखा जितना ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज़्यादा होगा, और जितना ही डिस्टेंस कम होगा उतना ही उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा. डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा. तो ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ को हम कहते हैं ग्रेविटी, हम कहते हैं ग्रेविटी की वजह से ऐसा हो रहा है. तो ये जो ग्रेविटी है ये एक्चुअली द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ है. अर्थ में जो हम ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं या फील करते हैं उसको हम ग्रेविटी कहते हैं. और जो बहुत लार्ज मास है, अर्थ, मून, सन, प्लैनेट्स, तो इन लोगों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है. तो यहाँ तो एक फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहा है. हमने पहले भी कहा था कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई होता है तो उसमें एक एक्सलरेशन होता है, उस फोर्स के वजह से बॉडी में एक्सलरेशन आती है. तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है तो भी बॉडी में एक एक्सलरेशन प्रोड्यूस होगा और बॉडी एक्सलरेटेड मोशन में जाएगा. तो इस केस में जो एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है उसके वजह से जो एक्सेलरेशन है उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम सिग्निफाई करते हैं स्मॉल जी के हिसाब से, और उसका वैल्यू ऑन अर्थ है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमारा नॉर्मल एक्सेलरेशन भी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एसआई यूनिट. इसका भी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और इसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन और अराउंड द अर्थ हम एवरेज वैल्यू ले लेते हैं. तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमने देखा कि अगर फोर्स अप्लाई होता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका जी है तो एफ इक्वल टू एम जी, और जो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ मूव कर रहा है उसका मास सपोज स्मॉल एम है और अर्थ का मास है कैपिटल एम, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज सपोज आर। तो इन दोनों के बीच में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स आप कैलकुलेट करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से, तो एफ इक्वल टू जी स्मॉल एम कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एम जी एफ इक्वल टू एम जी है और एफ इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर है। तो इन दोनों को अगर हम इक्वेट कर दें तो जी इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर, जी इज स्मॉल जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज इक्वल टू कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट इंटू कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल एंड द अर्थ। तो अर्थ सरफेस और पार्टिकल के बीच में हमने ये डिस्टेंस ले लिया। तो ये जो एक्सप्रेशन है जी एम बाय आर स्क्वायर, इसको अगर आप देखेंगे तो जी एम बाय आर स्क्वायर में कहीं भी आपको पार्टिकल का मास नज़र नहीं आ रहा है। तो इसी यही वजह है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है हर ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जी का वैल्यू कांस्टेंट होता है, बस आप एक जगह पे मेजर कर रहे हो। अर्थ के किसी एक प्लेस पे अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट 1 kg 2 kg 4 kg कुछ भी ले लीजिए, उसके लिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं होगा। तो ये आप एक एक्टिविटी से भी देख सकते हैं कि वो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिफरेंट मास ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर इक्वली एक्ट करता है। आप एक छत के ऊपर चले जाइए और वहाँ से दो डिफरेंट मास के स्टोन ले लीजिए, अलग अलग मास के, और दोनों को एक ही साथ ड्रॉप कीजिए, फेंकना नहीं है ड्रॉप करना है, दोनों को एक साथ एक ही हाइट से ड्रॉप कर दिया आपने, तो आप देखेंगे कि दोनों ही स्टोन अर्थ ग्राउंड पे एक ही साथ पहुँचेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की वेलोसिटी सेम थी, मास अलग अलग थी पर दोनों की वेलोसिटी इक्वल रहा, क्योंकि दोनों पे इक्वल एक्सेलरेशन काम कर रहा है और ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इसके ऊपर और एक इंटरेस्टिंग आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। सपोज आपने एक कॉइन ले लिया और एक सिंपल पेपर का एक पेज ले लिया और दोनों को इक्वल हाइट से आपने गिराया, तो कौन पहले गिरेगा? जाहिर सी बात है पहले कॉइन गिर जाएगा और पेपर नहीं गिरेगा। तो यहाँ से तो ये नज़र आता है कि डिफरेंट मास के लिए सेम एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा है, पर अब क्या करना है, वो जो पेपर का पेज था उसको क्रम्पल करके आप एक बॉल बना लीजिए, अभी वही कॉइन और बॉल पेपर बॉल को दोनों को एक साथ गिराइए, अब देखेंगे कि दोनों एक ही साथ गिरेंगे। तो इन दोनों में डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि जब वो पेज नॉर्मल ऐसे पेज के हिसाब से आपने गिराया था, उस पर एक फोर्स एक्ट कर रहा था जो है फोर्स ड्यू टू और एयर का जो रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस उसके ऊपर एक्ट कर रहा था जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो वो रेजिस्ट कर रहा था उसको गिरने से। पर जब आपने उसको बॉल की तरह बना लिया, अब वो एयर रेजिस्टेंस उतना काम नहीं करता है, तो अब दोनों एक ही साथ गिरा। तो यही ऐसे ये पता चलता है कि ऑब्जेक्ट का मास कैसा भी हो, कम हो ज़्यादा हो, डिफरेंट मास के दो ऑब्जेक्ट के ऊपर भी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है सेम तरीके से एक्ट करता है, सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करता है, दोनों का वेलोसिटी सेम होगा, इसलिए दोनों एक ही साथ नीचे गिरेंगे। तो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है उसको हम कैलकुलेशन पर्पस पे अर्थ के सरफेस पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं, पर क्योंकि जी इक्वल टू स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम बाय आर स्क्वायर डिपेंड्स अपन द रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ मतलब उसके सेंटर से सरफेस तक जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस लेते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए जो पोल है अर्थ के भी अलग अलग जगह पे आप चले जाओगे तो जी का वैल्यू वेरी करता है, पोल पे जितना है इक्वेटर पे उतना नहीं है। तो हम ये एवरेज वैल्यू लेते हैं 9.8 ऑन एंड अराउंड अर्थ। पर अगर आप मून पे चले जाओगे या किसी दूसरे प्लैनेट पे, दूसरे सैटेलाइट पे चले जाओगे, जी का वैल्यू चेंज हो जाता है, उसका मास, उसका रेडियस सबके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे ही जी का वैल्यू, स्मॉल जी का वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहता है हर जगह पे, वो डिपेंड करता है जगह, अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है। पर जो कैपिटल जी है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, उसका वैल्यू कांस्टेंट रहता है। हम डिस्कस कर रहे थे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। स्मॉल जी विच इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। कैपिटल जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम इज मास ऑफ द अर्थ और आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल एंड अर्थ। तो यहाँ पे हमने देखा कि जी का वैल्यू प्लेस टू प्लेस चेंज होता है और इसका वैल्यू हम ऑन अर्थ एवरेज वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। तो इसके बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल्स अगर आते हैं, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो आप जी इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर, जैसे कैपिटल जी का वैल्यू तो पता ही है और दिया हुआ होगा, और मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ अगर दिया है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू। तो ऐसे न्यूमेरिकल सारा भी अटेंड कर सकते हैं। और दूसरी जो इस चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल के बेसिस पे आ सकता है वो है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी के अंडर जब हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पहले भी देखा था, जैसे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो वहाँ ऑब्जेक्ट नॉर्मली आप फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। उस केस में हम जब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है अर्थ के ऊपर, तब हम ये सारे फॉर्मूले यूज करते हैं। लेकिन कोई बॉडी आपने ड्रॉप किया कुछ हाइट से और वो अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स मूव कर रहा है, उस केस में आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि वो कितना हाइट मूव करेगा, कितने वेलोसिटी पे मूव करेगा, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के बाद वो कितने हाइट पे होगा? तो ये सब भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है, न्यूमेरिकल्स आप कैलकुलेट करें, वो क्वेश्चन को देखें, अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, आपको भी इससे बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और आप कर भी पाएंगे जब एग्ज़ाम में आएगा। तो इसमें भी आपको फॉर्मूला और ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पहले पढ़े थे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, इन तीनों इक्वेशन में ए की जगह पे आप सिर्फ आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी को रिप्लेस करना है। तो जो था एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अब आप कहेंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ए की जगह पे आपको जी करना है, और जी का वैल्यू कभी कभी दिया हुआ होता है, अगर नहीं दिया है तो भी ये वैल्यू आपको याद करना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहीं कहीं पे अगर डाटा में ही कैलकुलेशन आसान करने के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी दिया हुआ होता है, तो दोनों इक्वली वैलिड होते हैं। जो डाटा दिया है उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी इक्वल टू यू प्लस सी टी, एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एस। एस की जगह पे आप एच हाइट भी ले सकते हैं। तो ऐसे ही आप मोशन अंडर ग्रेविटी में ऑब्जेक्ट की मोशन, उसके एक्सेलरेशन या फिर उसका वेलोसिटी, किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी इंस्टेंट पे हाइट कितना कवर करेगा। इसमें और एक चीज़ आपको बहुत बार आता है, क्लू आपको उसमें दिया हुआ होता है पर आपको नहीं समझ आता, जैसे ये कि एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट 15 मीटर, कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। तो इस पे आप देखेंगे कि एक हाइट ही तो दिया हुआ है 15 मीटर, और तो कोई डाटा नहीं दिया हुआ है। पर जब ये लिखा हुआ होता है कि ये बॉडी इज ड्रॉप जहाँ पे करा है वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटीज़ जीरो, ये आपको एज्यूम करना है। जहाँ पे ड्रॉप लिखा हुआ है उसका मतलब ये होता है कि उसका इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, तो ये आपको अपने आप ले लेना है। मतलब आपको इनिशियल वेलोसिटी भी दिया हुआ है यू इक्वल टू ज़ीरो, वी आपको कैलकुलेट करना है, हाइट आपको दिया हुआ है, जी का वैल्यू अगर नहीं दिया हुआ है तो भी आपको, क्योंकि ये हाइट मोशन अंडर ग्रेविटी चल रहा है, आपको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके इसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे तीन वैल्यू आपको दिया हुआ है, u इक्वल टू 0, h इक्वल टू 50 मीटर एंड g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ें ग्रेविटेशनल वाले जो न्यूमेरिकल है उसमें आपको एज्यूम, मतलब ये दिया हुआ है मान के चलना पड़ता है, ये सब ऐसे ही होता है। तो इन सब चीज़ों का आपका ध्यान रखना होगा, अदरवाइज कैलकुलेशन वैसे ही होता है। और अगर थ्रोन विद ए वेलोसिटी थ्रो किया है तो इनिशियल वेलोसिटी उसमें दिया होगा और उसी वेलोसिटी के साथ आपको कैलकुलेट करना है। थ्रो के केस में आप u इक्वल टू 0 नहीं ले सकते, इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं ले सकते, तो उसका ध्यान रख के आपको कैलकुलेट करना है। और जब भी आप न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर रहे हैं सारे यूनिट को एक ही सिस्टम में लाएंगे, या इधर ऑल आर इन SI यूनिट और ऑल दी यूनिट्स आर इन CGS सिस्टम, इस बात का ध्यान रखना है। और टोटल रिजल्ट जब कैलकुलेट करते हैं तो यूनिट लिखना नहीं भूलना है। तो हम अब डिस्कस करते हैं मास एंड वेट। हम बहुत टाइम बोलते हैं कि इसका मास, हम तो ये कहते हैं जब बाजार में आप खरीदने जाते हैं तो आप कहते हैं एक किलो चीनी या एक किलो कोई भी सब्जी आप लेकर आ रहे हैं, तो वो जो आप बोल रहे हैं उसको मास ही कहते हैं, केजी। मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं केजी में, पर हम जब मेजर कर रहे हैं कहीं हम वेट के बारे में तो नहीं कर रहे हैं। तो मास ये होता है कि वो जितना भी मैटर किसी बॉडी में कंटेंट होता है वो उसका मास होता है। वो कहीं भी आप चले जाओ वो कॉन्स्टेंट होता है, चाहे अर्थ पर ले जाओ या मून पर ले जाओ, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। पर जब हम वेट की बात करते हैं, वेट कोई अलग चीज़ है। आप हमेशा ये गलती हमसे होता है कि आपकी वेट कितनी है, बॉडी की वेट हम बोलते हैं लेकिन हम रिप्रेजेंट करते हैं केजी में कि 50 किलो है, 60 किलो है, जो भी है। वेट कभी किलो में हम नहीं कहते हैं, मास। पर हम कभी नहीं ये नहीं पूछते कि आपका मास कितना है, आपकी बॉडी की वेट कितना है। तो वो एक गलत नोटेशन है। हम मास को हमेशा केजी में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वेट ऐसी चीज़ है, वो एक फोर्स है। वेट ऑफ ए बॉडी ऑन अर्थ, अगर अर्थ पे हम बात कर रहे हैं किसी बॉडी का, वेट का मतलब है उसको अर्थ कितने फोर्स से अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज़ वेट। और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स है तो हम इसको न्यूटन यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं। और वेट मेजर करने के लिए हम स्प्रिंग बैलेंस के यूज करते हैं, मास मेजर करने के लिए हम पेन बैलेंस से हम मास मेजर करते हैं और स्प्रिंग बैलेंस से वेट मेजर करते हैं। आपने देखा भी होगा स्प्रिंग बैलेंस, उसमें एक हुक लगा हुआ होता है, उस हुक में उस मास को जब हम हैंग करते हैं तो उसमें एक स्केल होता है, पॉइंटर होता है, और उसमें जो स्केल होता है वो न्यूटन से मार्क किया हुआ होता है। तो वो पॉइंटर जितने जिस मार्क के आगे रुकता है उतना न्यूटन है उसका वेट। तो हम भी जब अपना वेट कहते हैं तो वेट को न्यूटन यूनिट में ही कहा जाता है। कभी कभी वो जो स्केल जिससे आप मेजर करते हैं वो केजी यूनिट के साथ आता है और वेट मेजर करता है, तो वो ऐसा नहीं होता है। वेट हमेशा न्यूटन यूनिट में ही कहा जाता है। तो अगर हम जैसे हमने कहा कि मास कांस्टेंट रहता है कहीं पे ले जाओ, क्योंकि वो उस ऑब्जेक्ट में जितना मैटर कंटेंट है वो चेंज नहीं होगा, तो मास इसलिए कांस्टेंट है। पर उस मास को हम अर्थ पे मेज़र कर रहे हैं उसका वेट जितना होगा, उसी मास को आप मून पे अगर मेज़र कर रहे हैं उसका वेट अलग होगा। मास सेम होगा, वेट अलग होगा, क्योंकि वेट इज़ इक्वल टू, वेट इज़ ए फोर्स एंड दैट इज़ इक्वल टू एम इंटू जी। उसमें एक जी फैक्टर आ रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड दैट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लेस, अलग अलग प्लेस पे उसका वैल्यू अलग है। इसीलिए वेट का भी, सेम बॉडी का वेट अलग अलग जगह पे अलग हो सकता है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो अलग आपका क्वेश्चन यही आता है कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज दिस मच न्यूटन, व्हेन यू टेक दिस ऑब्जेक्ट टू मून व्हाट विल बी इट्स वेट, उसका वेट कितना होगा। तो आप वहाँ पे उसका मास निकालेंगे, फिर उस मास को जी ऑन मून जितना भी है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वेट ऑन मून आपको मिल जाएगा। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल कैलकुलेट करना होता है, या वेट अलग अलग जगह पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, इससे इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो आगे से आप मास और वेट को ठीक से रिप्रेजेंट करेंगे। पर कभी कभी हम जब लिफ्ट में जाते हैं, आपने एक्सपीरियंस किया होगा जब लिफ्ट नीचे जाता है ऐसा लगता है कि जैसे हमारा बॉडी कुछ हल्का सा हो गया, या जब ऊपर जा रहा है तो हमें लगता है कि थोड़ा सा हैवी हो गया हमारा बॉडी का वेट। तो ऐसा क्यों लगता है? या फिर मेरी गो राउंड पे आप जब बैठते हैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील होता है, जब वो बहुत स्पीड से नीचे आ रहा होता है ऐसा लगता है जैसे हम बिल्कुल ये टूट गया है और हम नीचे गिरने वाले हैं, बिल्कुल वेटलेस सा फील होता है। तो ऐसा फीलिंग क्यों आता है? इस फीलिंग को कहते हैं वेटलेसनेस। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को आप जब मेजर कर रहे हो, सपोज़ एक बच्चा ले लिए को आप उसका वेट मेजर कर रहे हो, तो जो वेइंग मशीन होता है उसके ऊपर आपने खड़ा कर दिया, खड़े करने के बाद क्या होता है, वो एक फोर्स नीचे की तरफ एक्ट करता है दैट इज़ इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट और वेट ऑफ द चाइल्ड। उस चाइल्ड का, उस बच्चे का जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट करता है, W इक्वल टू एम जी। और उस वेइंग मशीन को आपने एक फ्लोर के ऊपर, रिजिड फ्लोर के ऊपर रखा है, तो उस फ्लोर के ऊपर जो एक्ट कर रहा है वो है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट और वेट ऑफ द चाइल्ड। उस वेट के वजह से उस फोर्स जो नीचे एक्ट हो रहा है उसका एक रिएक्शन फोर्स, आपने न्यूटन्स थर्ड लॉ में पढ़ा था एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जो एक्शन एक्ट कर रहा है फ्लोर के ऊपर वेट इक्वल टू एम जी, उसके अपोजिट फोर्स रिएक्शन फोर्स कहते हैं, उतना ही रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट करता है और उस रिएक्शन फोर्स को वेइंग मशीन मेजर करता है। अब अगर आपने इस फ्लोर को नीचे से हटा दिया तो क्या होगा, उस वेइंग मशीन और वो चाइल्ड बच्चा दोनों ही नीचे अर्थ के सेंटर की तरफ गिरने लगेंगे। तो अब क्योंकि रिजिड फ्लोर नहीं है तो वो रिएक्शन फोर्स आ ही नहीं पाएगा। जब रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट नहीं करेगा तो आपका वेइंग मशीन कुछ भी मेजर नहीं करेगा, इसीलिए हमें वो वेटलेसनेस, आपका वेट अभी ज़ीरो दिखाएगा, इसीलिए हम वो वेटलेसनेस फील करते हैं, क्योंकि रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट नहीं करता है, वेट ज़ीरो हो जाता है और हमें वो वेटलेसनेस फील होता है। तो ये सबसे ज़्यादा जब एस्ट्रोनॉट स्पेस शिप पे जाते हैं ऊपर और वहाँ वो नीचे की तरफ आ रहा होता है, फ्री फॉल, फ्री फॉल मतलब वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जितने हैं उतने ही उसमें नीचे की तरफ आ रहा होता है, तो उस टाइम उनको वेटलेसनेस फील होता है और उनको लगता है जैसे हवा में ऐसे ही फ्लोट कर रहे हैं। तो ये जो फीलिंग है इसको हम कहते हैं वेटलेसनेस। अब ग्रेविटी और एक चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा लिंक्ड है, वो है बॉयंसी। तो बॉयंसी क्या है, ये हमारे जो डेली लाइफ में हम एक्सपीरियंस करते हैं उस चीज़ों को हम अभी साइंस के हिसाब से उसकी रीज़न ढूंढ रहे हैं। आप एक मग पानी में से भरा हुआ मग जब उठाते हैं कुछ वेट फील करते हैं, उसी मग को, पानी से भरा हुआ मग को अब किसी कंटेनर जिसमें पानी है उसके अंदर ले जाइए, जब पानी में डुबा देते हैं तब आपको वो उतना वेट फील नहीं होता, लगता है कुछ हल्का हो गया। ये क्यों होता है, क्योंकि उस पानी से भरा हुआ मग के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स एक्ट करता है, जब आप पानी के अंदर ले जाते हैं उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स एक्ट करता है, और वो अपवर्ड फोर्स कितना है, उतना जितना पानी वो मग डिस्प्लेस करता है। पानी में डुबा दिया तो कुछ पानी डिस्प्लेस हो जाता है, सपोज़ एक ग्लास भरा हुआ है उसमें आपने एक छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट कॉइन गिरा दिया तो थोड़ा सा पानी गिर जाता है, या कोई ऑब्जेक्ट गिरा दिया, बॉल डुबा दिया उसमें तो पानी गिर जाता है, तो उतना पानी वो डिस्प्लेस किया बोलते हैं हम। तो जितना पानी वो डिस्प्लेस करता है उस पानी का वेट जितना है उतना हल्का आपको फील होगा। उस ऑब्जेक्ट के वेट से उतना वेट माइनस कर देंगे तो जितना वेट है हमें उतना ही फील होगा, तो कुछ वेट हमें हल्का लगता है। और ये जो अपवर्ड फोर्स है उसको हम कहते हैं बॉयंसी, और उसको अपथ्रस्ट भी कहा जाता है। और ये बहुत ही बड़ी बात, बहुत बड़ी फाइंडिंग है साइंस में, जो जिसका बहुत सारा एप्लीकेशंस है। जैसे कि जो पानी के जहाज़ वगैरह बनाए जाते हैं वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है। और ये जो प्रिंसिपल है उसको हम कहते हैं आर्कमिडिस प्रिंसिपल। आर्कमिडिस प्रिंसिपल क्या कहता है? आर्कमिडिस प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी ऑब्जेक्ट को हम अगर किसी फ्लूइड में डुबाते हैं, पार्शियली या फिर फुल्ली डुबा रहे हो या पार्शियली डुबा रहे हो, तो वो क्या होता है, जब हम डुबाते हैं वो अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है एंड दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड और फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना फ्लूइड डिस्प्लेस होता है उसका वेट जितना है उतना ही आपको वेटलेस फील होगा, या इतना ही अपवर्ड फोर्स उसके ऊपर एग्जर्ट होता है। तो इसके ऊपर बेस्ड होके आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट को आप पानी में डालने के बाद वो फ्लोट करेगा या डूब जाएगा, इससे आपको पता चलता है। ये जहाज़ ऐसे बनाया जाता है, इतना बड़ा बड़ा जहाज़, उसका मास इतना ज़्यादा है, फिर भी वो पानी में फ्लोट करता है, पर आप एक निडिल पानी में गिरा दोगे तो वो डूब जाता है, क्योंकि वो इतना पानी डिस्प्लेस कितना करता है। अगर उसका वेट जितना है उससे ज़्यादा पानी वो डिस्प्लेस कर रहा है, देन इट विल फ्लोट ऑन द वाटर, और उससे कम पानी, उसके वेट से कम पानी वो डिस्प्लेस कर रहा है तो वो डूब जाएगा। तो इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, पर आर्कमिडिस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होके बहुत सारे चीज़ें, उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस, जैसे सीप डिज़ाइन किया जाता है, सबमरीन की डिज़ाइन भी इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। हाइड्रोमीटर एक डिवाइस होता है जिससे हम किसी भी लिक्विड की डेंसिटी मेज़र करते हैं, तो हाइड्रोमीटर भी इसी आर्कमिडिस प्रिंसिपल के ऊपर ही बेस्ड है। लैक्टोमीटर आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा कि दूध में कितना पानी मिला हुआ है, उसी से मेज़र करके पता चल जाता है, तो लैक्टोमीटर भी आर्कमिडिस प्रिंसिपल के ऊपर ही बेस्ड है, जिससे आपको दूध की प्योरिटी के पता चलता है। तो आर्कमिडिस प्रिंसिपल भी एक, इसके ऊपर एक स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है कि आर्कमिडिस एक साइंटिस्ट थे, वहाँ के जो किंग थे उनका एक क्राउन बनाया गया, तो राजा को लगा कि इसमें कुछ मिला हुआ है, तो उन्होंने बोला कि बिना तोड़े इसमें कितना इम्प्योरिटी मिलाया हुआ है वो आपको मेजर करना है। तो क्राउन को बिना तोड़े उसमें गोल्ड कितना और इम्प्योरिटी कितना है कैसे मेज़र करना है, आर्कमिडिस को दिया गया। वो सोचने लगे, उनको नहीं मिला, फिर वो नहाने चले गए और फुल टब पानी भरा हुआ था, उसके अंदर जैसे ही वो घुस गए कुछ पानी बाहर निकल गया, तब उनको उस चीज़ का सॉल्यूशन मिल गया, और वो यूरेका यूरेका कह के चिल्ला के पूरे स्ट्रीट में घूमने लगे। यूरेका का मतलब होता है आई गॉट इट, मतलब उनको वो सॉल्यूशन मिल गया था। इसका मतलब ये है कि इस प्रिंसिपल से आप ये मेज़र करते हैं कि उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट पानी में डुबा के उसका ऑब्जेक्ट में कितना मिलावट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा टोटल चैप्टर ग्रेविटेशन के ऊपर। हमने खूब सारी चीज़, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आर्कमिडिस प्रिंसिपल, सारा कुछ डिस्कस किया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है आप हमें मेल कर सकते हैं, या आप अपने सवाल हमें पूछ सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं।